नमस्कार मित्रों और भाइयों, मैं डॉक्टर बॉब थील कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड से बोल रहा हूं। मैं उस आज्ञा के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका सबसे अधिक उल्लंघन होता है, साथ ही साथ आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए इस पर भी चर्चा करना चाहता हूं। 10 आज्ञाओं में से सबसे अधिक तोड़ी जाने वाली आज्ञा कौन सी है? सप्त का पालन करने वाले अक्सर कहते हैं कि यह चौथी आज्ञा है। कुछ लोग कहेंगे कि यह 10वीं आज्ञा है जिसका संबंध लोभ या वासना से है। वास्तव में सबसे अधिक तोड़ी जाने वाली आज्ञा पहली आज्ञा है। यह सबके लिए प्राथमिकताओं से संबंधित है। इसे लगभग हर दिन लगभग हर कोई तोड़ता है। चौथी आज्ञा के दो भाग हैं। एक भाग कहता है कि 6 दिन तुम परिश्रम करोगे और अपना सारा काम करोगे, और दूसरा भाग कहता है कि 7वां दिन विश्राम का दिन है, तुम विश्राम करोगे। अधिकांश लोग सप्ताह में 6 दिन शारीरिक काम करते हैं, लेकिन वे 7वें दिन काम करना बंद नहीं करते। इसलिए वे कम से कम इसका कुछ हिस्सा तो निभाते ही है, क्योंकि अधिकांश लोग सप्त के दिन किसी न किसी प्रकार का काम करते हैं। जहां तक आज्ञाओं का सवाल है, जरा इस पर और अपनी प्राथमिकताओं पर विचार कीजिए। क्या मानव जीवन भौतिक सुखों पर केंद्रित होना चाहिए? निश्चित रूप से दुनिया के अधिकांश लोग जीवन को इसी तरह जीते हैं। बेशक उनके धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनकी परंपराएं हैं और बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके लिए ईश्वर वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। ईसाइयों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास बाइबल है तो आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। हम मत्ती अध्याय 6 में जा रहे हैं। मैं यीशु द्वारा कहे गए कुछ वचन पढूंगा जो पद 31 से शुरू होंगे। भौतिक और आध्यात्मिक प्राथमिकताओं के संदर्भ में यीशु ने कहा, इसलिए चिंता मत करो यह कहते हुए कि हम क्या खाएंगे, या हम क्या पिएंगे, या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब चीजों की खोज करते हैं। अन्य जाति से उनका तात्पर्य अविश्वासियों से है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। जहां तक धार्मिकता की बात है, बाइबल भजन संहिता 119 में सिखाती है, आपकी सभी आज्ञाएं धार्मिकता है। क्या आप ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं? मुझे याद है, दशकों पहले किसी ने मुझसे कहा था कि भगवान को मेरे करियर के आड़े नहीं आना चाहिए। वह खुद को एक तरह का ईसाई बताता था, लेकिन जाहिर तौर पर वह यह नहीं मानता था कि पहले ईश्वर के राज्य को देखना ज्यादा जरूरी है। वह भौतिक चीजों को लेकर ज्यादा चिंतित था। उसे चीजों की जरूरत थी, नौकरी चाहिए थी, इसलिए यह ठीक था। ईसाइयों को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं फिलिप्पियों अध्याय 3 पद 14 में पौलुस द्वारा लिखी गई कुछ बातें पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की ओर से मिले उच्च बुलावे के लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता हूं। यह उच्च बुलावा, जिसे बाइबल के किंग जेम्स संस्करण में उच्च बुलावा के रूप में अनुवादित किया गया है, भौतिकवादी हितों से परे है। यह एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। कितना ऊंचा? यदि आप अभी भी मत्ती की किताब पढ़ रहे हैं तो अध्याय 5 तक पहुंचने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। मत्ती 5 अध्याय 48 कहता है, इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसे स्वर्ग में तुम्हारा पिता सिद्ध है। यदि तुम पहली आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो और तुम्हारी प्राथमिकताएं गलत है, तो तुम उस सिद्धता के लक्ष्य में असफल हो रहे हो जो यीशु ने मसीहियों के लिए निर्धारित किया था। अब मैं फिलिप्पियों में पौलुस द्वारा लिखी गई एक और बात पढ़ने जा रहा हूं, इस बार फिलिप्पियों अध्याय 2 से। मैं आपको वहां जाने के लिए थोड़ा समय दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं फिलिप्पियों में कुछ और पढ़ने जा रहा हूं। विराम 02। फिलिप्पियों 2 अध्याय 5 में पौलुस ने लिखा, तुम में वही सोच हो जो मसीह यीशु में थी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को लूट नहीं समझा। यीशु ने देवत्व को समझा था और मसीहियों को भी समझना चाहिए। देवत्व ही मसीहियों का अंतिम लक्ष्य है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए यही योजना बनाई है। मसीह में रहने वाली मानसिकता प्राप्त करने में सहायता के लिए आपको क्या करना चाहिए? आइए फिलिप्पियों अध्याय 4 में चलते हैं। इस बार श्लोक 8 से शुरू। अंत में हे भाइयों, जो कुछ सत्य है, जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ न्यायसंगत है, जो कुछ पवित्र है, जो कुछ प्यारा है, जो कुछ अच्छी खबर है, यदि कोई सद्गुण है और यदि कोई प्रशंसनीय बात है, तो उन बातों पर मनन करो। आपको ईश्वर की तरह सोचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए निर्गमन अध्याय 20 खोलते हैं, और मैं निर्गमन की पुस्तक से पहली आज्ञा पढ़ता हूँ। निर्गमन अध्याय 20। मैं आपको वहां तक पहुँचने के लिए थोड़ा समय देता हूँ। श्लोक 2 से शुरू करते हुए, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से दासता के घर से बाहर निकाल लाया। तुम मेरे सामने किसी और देवता को नहीं मानोगे। यह पहली आज्ञा है। यह पहली आज्ञा है, और इसी के कारण इसका सबसे अधिक उल्लंघन होता है। अब कुछ लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि इसमें मिस्र देश की बात की गई है, इसलिए यह आज्ञा, साथ ही अन्य आज्ञाएं भी, केवल इसराइलियों के लिए थीं। यह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि इस आदेश के कुछ रूप इसराइलियों के अस्तित्व में आने से पहले और यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी मौजूद थे। यह इस तथ्य को भी नजरअंदाज करता है कि प्रकाशित वाक्य 11:08 में बाइबल आध्यात्मिक मिस्र के बारे में बात करती है। इस बात पर विचार करें कि क्या आप इस संसार के झूठे मार्गों और परंपराओं से बाहर आ चुके हैं? क्या आपने वास्तव में अपनी वासनाओं और पापों के लिए पश्चाताप किया है? यह आज्ञा बाइबल में सिनाई पर्वत से पहले से मौजूद थी। आइए उत्पत्ति की किताब अध्याय 15 खोले और पद 7 से पढ़ना शुरू करें। यह दिलचस्प है, क्योंकि इसकी शुरुआत लगभग एक जैसी ही है। उत्पत्ति 15, पद 7, मैं यहोवा हूं, जो तुम्हें कसदियों के ऊर से बाहर लाया। अब चलिए कुछ अध्याय आगे बढ़ते हैं। अध्याय 17 पर मैं केवल पहला श्लोक पढ़ूंगा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे सामने चलो और निर्दोष रहो। अब चलिए कुछ और अध्याय आगे बढ़ते हैं, काफी सारे, अध्याय 26 पर और अब्राहम के बारे में जो लिखा है उसे पढ़ते हैं। उत्पत्ति 26, पद 5, अब्राहम ने मेरी वाणी मानी और मेरे आदेश, मेरी आज्ञाएं, मेरे नियम और मेरी विधियां मानी। यहां आज्ञाओं के रूप में अनुवादित इब्रानी शब्द मित्सवोताय है। यह वही शब्द है जिसका प्रयोग निर्गमन अध्याय 20 पद 6 में किया गया है, जहां 10 आज्ञाओं का उल्लेख है। उत्पत्ति की यह आयत दर्शाती है कि अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया और वह जानता था कि परमेश्वर उसे क्या अपेक्षा करता है। यह 10 आज्ञाओं के सिनाई पर्वत पर दिए जाने से सदियों पहले की बात है। मसीही होने के नाते हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। आप इसे पत्रस अध्याय 1 पद 13 से 14 में पढ़ सकते हैं। अब जैसा कि प्रेरितों के कार्य अध्याय 5 पद 32 में लिखा है, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि यह परमेश्वर की परिभाषाओं में से एक है? चलिए रोमियो अध्याय 6 में चलते हैं। रोमियो अध्याय 6, मैं पद 16 पढ़ने जा रहा हूं। पौलुस ने लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिसके सामने अपने आप को दास बनाकर आज्ञा मानने के लिए प्रस्तुत करते हो, तुम उसी के दास हो जिसकी आज्ञा मानते हो, चाहे वह पाप हो जो मृत्यु की ओर ले जाता है, या आज्ञा पालन हो जो धार्मिकता की ओर ले जाता है? क्या तुम सच्चे परमेश्वर की उपासना करोगे और धार्मिकता की ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलोगे, या मृत्यु की ओर ले जाने वाले मार्ग पर? आदम और हव्वा ने सच्चे ईश्वर के स्थान पर एक और देवता को अपना लिया था। आइए उत्पत्ति अध्याय 3 के पहले पद से शुरू करते हैं। वह सर्प मैदान के उन सभी जानवरों से अधिक चालाक था जिन्हें प्रभु परमेश्वर ने बनाया था। उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तू बाग के हर पेड़ का फल न खाए? स्त्री ने सर्प से कहा, हम बाग के पेड़ों के फल खा सकते हैं, परंतु जो पेड़ बाग के बीच में है, उसके फल के बारे में परमेश्वर ने कहा है, तू उसे न खाए और न छुए, नहीं तो तू मर जाएगी। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ही नहीं मरेगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तू उसका फल खाएगी, तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू परमेश्वर के समान भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लेगी। इसलिए जब स्त्री ने देखा कि वह पेड़ खाने के लिए अच्छा है, देखने में सुंदर है और बुद्धिमान बनाने वाला पेड़ है, तो उसने उसका फल लिया और खाया। उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उस स्त्री ने क्या किया? उसने पहली आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने परमेश्वर से पहले किसी और को स्थान दिया। अब आदम ने भी पहली आज्ञा का उल्लंघन किया क्योंकि नए नियम के अनुसार उसे बेहतर पता होना चाहिए था, लेकिन उसने परमेश्वर की अवज्ञा करना उचित समझा। हव्वा ने सर्प की बात सुनी और आदम ने हव्वा की बात सुनी। उन्होंने सच्चे परमेश्वर से पहले किसी और देवता को स्थान दिया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए नए नियम में मत्ती अध्याय 22 खोलते हैं। मैं पद 35 से पढ़ना शुरू करूंगा। हमने उत्पत्ति में देखा कि हव्वा ने सच्चे परमेश्वर से पहले किसी और चीज को रखा और फिर आदम ने भी वही किया। यदि उन्होंने पहली आज्ञा का पालन किया होता तो वे कभी पाप न करते। मत्ती 22 के पद 35 से शुरू करते हुए हम यीशु के साथ घटी एक घटना के बारे में पढ़ते हैं। तब उनमें से एक वकील ने उनसे एक प्रश्न पूछा उनकी परीक्षा लेते हुए और कहा, हे गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने पूरे मन से, अपनी पूरी आत्मा से और अपने पूरे विवेक से प्रेम करना। तो यही पहली आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा। बहुत से लोग कहेंगे कि वे ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर उनके लिए वास्तविक नहीं है। वे ईश्वर की आज्ञा मानने से ऊपर अन्य चीजों को प्राथमिकता देते हैं। मैं यहोशू की पुस्तक में जाना चाहता हूं जहां मैं कुछ आयतें पढ़ूंगा। यहोशू 24 आयत 14 से 15। आप चाहे तो वहां जा सकते हैं। यहोशू 24 पद 15 से शुरू। इसलिए यहोवा का भय मानो, सच्चाई और निष्ठा से उसकी सेवा करो और उन देवताओं को त्याग दो जिनकी तुम्हारे पूर्वजों ने नदी के उस पार और मिस्र में पूजा की थी। यहोवा की सेवा करो। हो सकता है कि आपका पालन पोषण एक गैरीसाई परिवार में हुआ हो या ऐसे परिवार में हुआ हो जिसने मसीह में विश्वास तो किया हो लेकिन वास्तव में ईसाई न हो, और शायद इसी कारण से आपको कुछ भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या व्यवहार संबंधी समस्याएं हों। यहोशू लोगों से कह रहा था कि वे अपने झूठे देवताओं को त्याग दें और हमें भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। और यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरा लगे तो आज ही अपने लिए यह चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी तुम्हारे पूर्वजों ने नदी के उस पार पूजा की थी या उन अमोरी लोगों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु जहां तक मेरा और मेरे घर का सवाल है, हम यहोवा की या परमेश्वर की सेवा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ईसाई वास्तव में यह नहीं मानते कि वे झूठे देवताओं की पूजा करते हैं। खैर, भले ही यीशु ने पहली आज्ञा को सबसे महान बताया हो, फिर भी वही आज्ञा सबसे अधिक तोड़ी जाती है। मैं नीति वचन अध्याय 3 पर बार बार चर्चा करना चाहता हूं, विशेष रूप से प्राथमिकताओं के संदर्भ में, क्योंकि प्राथमिकताएं इस उपदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं इस पर फिर से चर्चा करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि इसे कितनी बार दोहरा सकता हूं। अगर लोग ऐसा करते तो वे पहली आज्ञा या किसी भी अन्य आज्ञा का पालन करते। नीति वचन 3 पद 5, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर भरोसा मत रखो, अपने सब कामों में उसे मानो और वह तुम्हारे मार्ग का मार्गदर्शन करेगा। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन गए हैं और स्वयं पर भरोसा करते हैं। बाइबल अगले पद में चेतावनी देती है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो, यहोवा का भय मानो और बुराई से दूर रहो। जो लोग अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हैं, वे वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और पहली आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। यीशु ने कहा कि मसीहियों को परमेश्वर की इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करनी चाहिए और यीशु का दृष्टिकोण था, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, जैसा कि उन्होंने लूका अध्याय 22 पद 42 में कहा है। जैसा कि यीशु के समय में था, बहुत से लोग मनुष्यों की परंपराओं को स्वीकार करते हैं जिससे परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता समाप्त हो जाती है। मत्ती 15 पद 3 से 9, बहुत से लोग अपने समझौतावादी चर्चों से निकाले जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते और फरीसियों के समय में यही हुआ था। फरीसी परमेश्वर की स्तुति से अधिक मनुष्यों की स्तुति को पसंद करते थे। यदि लोग पहली आज्ञा का पालन करते तो अपराध, नाजायज संतानें, यौन संचारित रोग, हत्याएं और चोरियां न होती। राजनेता और समाचार माध्यम भी सच बोलते। दुनिया बहुत बेहतर जगह होती। पहली आज्ञा इतनी महत्वपूर्ण है, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसका पालन करने से अपार समृद्धि और शांति प्राप्त होती। समाज में परिवर्तन आता और आध्यात्मिक शांति का राज होता। हालांकि शैतान इस युग में भी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, लोग याकूब की सलाह का पालन करेंगे। उन्होंने याकूब 4 के अध्याय 7 से 8 में लिखा है, जिसे मैं बस पढ़ रहा हूं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का विरोध करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। 8 परमेश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। यदि लोग पहली आज्ञा का पालन करें तो दुनिया बहुत बेहतर जगह बन जाएगी। एक ईसाई के रूप में आपका उद्धार आपके जीवन में निर्धारित प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। क्या आप प्राथमिकताएं निर्धारित करना जानते हैं? जब कई काम करने हों तो क्या आप यह तय कर पाते हैं कि महत्व के क्रम में कौन से काम पहले किए जाने चाहिए? मैं दिवंगत प्रचारक दिबार अपार्टियन द्वारा लिखित कुछ पढ़ूंगा। मान लीजिए आप अपने लिविंग रूम में शांति से बैठकर टेलीविजन पर समाचार देख रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि कमरा धुएं से भर गया है, आपके घर में आग लग गई है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से आग बुझाने में मदद मांगेंगे? क्या आप अग्निशमन विभाग को फोन करेंगे? क्या आप घर के अन्य कमरों में दौड़कर देखेंगे कि कहीं आपके परिवार का कोई सदस्य आग में तो नहीं फंस गया है? क्या आप बाहर जाकर पाइप लाकर आग बुझाने की कोशिश करेंगे? ये सभी चीजें आवश्यक हो सकती है, लेकिन आप सबसे पहले क्या करेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीद है आप तुरंत प्रार्थना करेंगे और फिर अपनी और दूसरों की मदद के लिए कदम उठाएंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक शाम आप घर की सफाई कर रहे हैं। आपके कमरे अस्त व्यस्त है और न तो आप और न ही आपके परिवार के अन्य सदस्य साफ सुथरे दिख रहे हैं। फोन की घंटी बजती है। यह आपके मालिक का फोन है। वह आपको बताते हैं कि उन्हें कुछ जरूरी बात बतानी है, इसलिए वह कुछ ही मिनटों में आ रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या आप जल्दी से घर को व्यवस्थित करेंगे? क्या आप अपने कपड़े बदलकर इस अवसर के लिए ज्यादा उपयुक्त कपड़े पहनेंगे? क्या आप रसोई में देखेंगे कि क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो आप अपने मालिक के आने पर उन्हें दे सकें? एक बार फिर, ये सभी चीजें आवश्यक हो सकती है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? यह सही प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का प्रश्न है। प्राथमिकताएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम सभी के इरादे अच्छे होते हैं, कम से कम अधिकांश समय तो, लेकिन असल मायने में महत्वपूर्ण है सही समय पर अपने इरादे को अमल में लाना, सही समय पर सही काम करना। जैसा कि सुलेमान ने लिखा है, इस दुनिया में हर चीज का एक समय होता है, उपदेशक 3:1-8। आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जब हम यह सीखते हैं कि जरूरी चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं लूका अध्याय 10 में जा रहा हूं। मैं पद 38 में जा रहा हूं। यह मार्था और मरियम की कहानी है। वे बहनें थीं जिनसे यीशु मिलने गए थे। दोनों बहनें यीशु को बहुत पसंद करती थीं और उनका बहुत सम्मान करती थीं। जब वे उनसे मिलने आए तो दोनों ने वही किया जो उन्हें महत्वपूर्ण लगा। लूका अध्याय 10 का पद 38। जब वे जा रहे थे तब यीशु एक गांव में पहुंचे और वहां मार्था नाम की एक स्त्री ने उनका अपने घर में स्वागत किया। उनकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, जो यीशु के चरणों में बैठकर उनके वचन सुन रही थी, परंतु मार्था सेवा कार्य में व्यस्त थी। बहुत सेवा करने में कोई बुराई नहीं है, ऐ ना, हम सभी को सेवा करने के लिए बुलाया गया है। स्वयं मसीह सबसे महान सेवक थे। हालांकि इस मामले में प्राथमिकताएं दांव पर थीं। श्लोक 40 में आगे बढ़ते हुए, और वह उसके पास आई मार्था का जिक्र करते हुए, हे प्रभु, क्या आपको इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेले सेवा करने के लिए छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहिए कि वह मेरी मदद करे। मार्था यीशु पर आरोप लगा रही है कि यीशु उसके द्वारा किए जा रहे सभी कामों की परवाह नहीं करते। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे कामों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि आप मार्था जैसी नहीं है, लेकिन आपको इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। यीशु ने पद 41 में उत्तर दिया और यीशु ने उससे कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों को लेकर चिंतित और परेशान हो, परंतु एक ही बात आवश्यक है और मरियम ने वह अच्छा भाग चुना है जो उससे छीना नहीं जाएगा। ऐसा नहीं था कि यीशु चाहते थे कि मार्था पर काम का बोझ ज्यादा हो या वे नहीं चाहते थे कि मरियम उनकी मदद करे। मरियम और मार्था के लिए सबसे जरूरी बात, या कहें कि सबसे अहम काम, यीशु की शिक्षाओं को सुनना था। अब हम लूका अध्याय 5 में चलते हैं। मैं पद 4 से शुरू करूंगा। जब यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया तो कुछ हिचकिचाए, लेकिन कुछ तुरंत उनके पीछे चल दिए, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर ली थीं। पद 4, जब उन्होंने यानी यीशु ने बोलना बंद कर दिया तो उन्होंने साइमन से कहा, गहरे पानी में जाओ और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। परंतु साइमन ने उत्तर दिया, गुरुजी, हमने रात भर परिश्रम किया और कुछ नहीं पकड़ा, फिर भी आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। तो साइमन कह रहा है कि मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं, परंतु वास्तव में कोई मछली नहीं है। हम यह पहले ही कर चुके हैं। आगे लिखा है, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने बहुत सी मछलियां पकड़ी और उनका जाल टूटने लगा। इसलिए उन्होंने दूसरी नाव में अपने साथियों को संकेत दिया कि वे आकर उनकी मदद करें, और वे आए और दोनों नावें मछलियों से भर गईं, जिससे वे डूबने लगीं। 8, जब साइमन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के घुटनों पर गिर पड़ा और कहा, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं, हे प्रभु। क्योंकि वह और उसके साथ के सभी लोग पकड़ी गई मछलियों की इतनी बड़ी मात्रा को देखकर चकित थे। और जेबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना भी, जो साइमन के साझेदार थे, ऐसे ही थे। यीशु ने साइमन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। इसलिए जब वे अपनी नावों को किनारे पर ले आए तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और यीशु के पीछे चल दिए। तो यहां साइमन पीटर, जेम्स और जॉन की बात हो रही है। उन्होंने सब कुछ त्याग कर यीशु का अनुसरण किया। क्या आप भी सब कुछ त्याग कर यीशु का अनुसरण कर सकते हैं? क्या आप अभी सब कुछ त्याग कर यीशु का अनुसरण कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने चमत्कार देखा, लेकिन कभी कभी लोग चमत्कार देखते हैं और फिर भी सही काम नहीं करते। पीटर और उनके साथियों ने अपनी प्राथमिकताओं को सही रखा और बाद में वे प्रेरित बने। हालांकि हर किसी ने इन तीनों व्यक्तियों की तरह प्रतिक्रिया नहीं दी। हर किसी की प्राथमिकताएं सही नहीं थीं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने मसीह का अनुसरण करने की इच्छा तो व्यक्त की, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं मसीह जैसी नहीं थीं। आइए लूका अध्याय 9 खोले और पद 57 से शुरू करें। उस पृष्ठ तक पहुंचने में आपको शायद आधा मिनट लग सकता है। विराम 02, श्लोक 57। फिर जब वे रास्ते में यात्रा कर रहे थे, तभी किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा जहां भी आप जाएंगे। यह दिलचस्प है कि मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करता हूं जो उत्साह से भरे हुए लगते हैं, लेकिन फिर वे वह नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। और यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के पास बिल होते हैं और आकाश के पक्षियों के पास घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। वह संकेत दे रहे हैं कि यह व्यक्ति शायद उनका अनुसरण नहीं करेगा। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे आओ। परंतु उसने कहा, प्रभु, पहले मुझे जाकर अपने पिता को दफनाने दो। यीशु ने उससे कहा, मरे हुए अपने मरे हुओं को दफनाए, परंतु तुम जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर दूसरे ने भी कहा, प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु पहले मुझे जाकर अपने घर वालों को विदाई देने दो। परंतु यीशु ने उससे कहा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। फिर भी अपनों को अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस मामले में और भी बहुत कुछ शामिल था। पहली बात तो यह कि इस व्यक्ति की प्राथमिकताओं में ईश्वर सबसे ऊपर नहीं था। दूसरी बात, उसके जवाब में उदासी का भाव साफ झलकता है। ऐसा लगता था मानो उसे बुलाए जाने का अफसोस हो, और शायद वह उम्मीद कर रहा था कि उसके प्रियजन उसे समझा लेंगे कि वह सुसमाचार के लिए उन्हें छोड़कर न जाए। चलिए यूहन्ना अध्याय 6 में चलते हैं। मैं पद 41 से शुरू करूंगा। कुछ लोग यीशु के पीछे चले और उन्होंने अनेक चमत्कार देखे, उन्हें बोलते सुना, उनकी कुछ बातें उन्हें पसंद आईं, लेकिन यीशु हमेशा उनकी परंपराओं का पालन नहीं करते थे और यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। पद 41, यहूदियों ने तब उसके बारे में शिकायत की, क्योंकि उसने कहा, मैं वह रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं है, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? फिर यह कैसे कहता है, मैं स्वर्ग से उतरा हूं? पद 43, यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, आपस में बड़बड़ाओ मत, जो पिता मुझे भेजने वाला है, वह जब तक उसे मेरे पास न बुलाए, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता, और मैं उसे अंतिम दिन जीवित करूंगा। भविष्यवक्ताओं में लिखा है, और वे सब परमेश्वर द्वारा सिखाए जाएंगे, इसलिए जिसने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पिता को देखा है, सिवाय उसके जो परमेश्वर से है, उसने पिता को देखा है। मैं तुमसे निश्चय ही कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। मैं जीवन की रोटी हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, जिसे खाकर कोई न मरे। मैं वह जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी को खाता है तो वह अनंत जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दूंगा वह मेरा शरीर है, जिसे मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा। अब इससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हुईं। पद 52, यहूदियों ने आपस में झगड़ा करते हुए कहा, यह मनुष्य हमें अपना मांस खाने को कैसे दे सकता है? तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं है। जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसे अनंत जीवन मिलता है, और मैं उसे अंतिम दिन जिलाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस भोजन है और मेरा लहू पेय है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही जो मुझ पर निर्भर रहता है वह मेरे कारण जीवित रहेगा। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, वैसी नहीं जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह अनंत जीवन पाएगा। बहुत से लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा, हमें मनुष्य नहीं खाना चाहिए। उन्हें लगा कि वे समझ गए हैं कि यीशु का क्या मतलब है, लेकिन वे नहीं समझ पाए। कभी कभी लोग खुद को यह समझा लेते हैं कि वे किसी धार्मिक मुद्दे पर सही है और वे गलत काम कर बैठते हैं। पद 59, ये बातें उसने कफरनाऊ में सिखाते हुए आराधनालय में कहीं। इसलिए जब उसके बहुत से शिष्यों ने यह सुना तो उन्होंने कहा, यह कठिन बात है, इसे कौन समझ सकता है? जब यीशु ने अपने मन में जान लिया कि उसके शिष्य इस बात की शिकायत कर रहे हैं, तो उसने उनसे कहा, क्या इससे तुम्हें ठेस पहुंचती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को वहां चढ़ते हुए देखो जहां वह पहले था, तो क्या होगा? आत्मा ही जीवन देती है, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। यह फिर से पहली आज्ञा का संदर्भ है, तुम्हें परमेश्वर को सर्वोपरि रखना चाहिए। आगे यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है और वे जीवन है, लेकिन तुम में से कुछ ऐसे भी है जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु शुरू से ही जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन उन्हें धोखा देंगे, इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक मेरे पिता उसे अनुमति न दे। उस समय से उनके बहुत से शिष्य पीछे हट गए और उनके साथ चलना छोड़ दिया। कुछ लोग हमारे साथ आना शुरू तो करेंगे, लेकिन वे इंटरनेट पर हमारे बारे में कुछ बुरा पढ़ लेंगे, या हमारी किसी बात को गलत समझ लेंगे, या यह नहीं समझेंगे कि वह बात सही है। कुछ लोगों को लगेगा कि वे किसी बात को लेकर सही है, ठीक वैसे ही जैसे इन लोगों को पूरा यकीन था कि वे सही है और उन्होंने यीशु से मुंह मोड़ लिया। आप सोच सकते हैं कि मैं यीशु से मुंह नहीं मोड़ूंगा, लेकिन इतिहास में लोगों ने परमेश्वर के नबियों, परमेश्वर के सेवकों यीशु और परमेश्वर के वचन को नहीं सुना और उन्होंने इसे सही ठहराया। आगे क्या हुआ? पद 67, तब यीशु ने 12 शिष्यों से कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? परंतु साइमन पत्रस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके पास अनंत जीवन के वचन हैं, और हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र है। क्या मैं आपसे यह कह रहा हूं कि एकमात्र सच्चा और संभव चर्च कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड ही है? नहीं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि यदि आप चर्च ऑफ गॉड के फिलाडेल्फिया अवशेष का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मुझे कोई अन्य संगठन नहीं पता जो बाइबल के मानदंडों को पूरा करता हो। इसलिए इससे पहले कि आप यह तय कर ले कि कोई और काम करना उस काम से ज्यादा जरूरी है जो आपको करना चाहिए और जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है, इस पर विचार करें। यीशु के कुछ शिष्यों की प्राथमिकताएं सही थीं, यहूदा की नहीं, लेकिन बाकी शिष्यों की प्राथमिकताएं लगभग सही थीं। वे जानते थे कि फरीसियों और सदूकियों का धर्म सही नहीं था, लेकिन भले ही वे यीशु की सभी शिक्षाओं को नहीं समझते थे, फिर भी वे यीशु के साथ बने रहे और यही यीशु की अपेक्षा है। वह अपने लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वे परमेश्वर के कार्य का अनुसरण करें और उसमें सहयोग दें। आशा है कि आप जानते होंगे कि ग्रीको रोमन प्रोटेस्टेंट चर्च परमेश्वर के सच्चे चर्च नहीं है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आज सच्चा ईसाई चर्च कहाँ है, तो हमारे पास अंग्रेजी में एक निःशुल्क पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध है, www.ccog.org। इसमें आपको बाइबल के मानदंडों के साथ साथ कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड में चल रही गतिविधियों की जानकारी मिलेगी। हम आपसे पैसे या आपका ईमेल पता नहीं मांगते। आप बस ऑनलाइन जाएं, किताबों पर क्लिक करें, इसे ढूंढें और पढ़ें। इसमें प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी है। क्या आपकी प्राथमिकताएं सही है? सिर्फ इसलिए सच्चे चर्च से मुन्न मोड़े क्योंकि कोई बात आपकी पसंद या परंपराओं के अनुरूप नहीं है। क्या आपको अपने बुलावे की परिस्थितियां याद है? आपकी पहली प्रतिक्रिया कैसी थी? क्या आपने पहले पढ़े उदाहरण की तरह मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लेने से पहले किसी को या किसी चीज को दफनाने की इच्छा की थी? क्या आप दुनिया से मुंह मोड़ने में हिचकिचा रहे थे? अपने परिवार और मसीह के बीच चुनाव करना आपके लिए कठिन था? तब आपका रवैया कैसा था और अब कैसा है? उसी वेबसाइट पर हमारी एक पुस्तिका भी है जिसका शीर्षक है, क्या ईश्वर आपको बुला रहा है? हम में से अधिकांश के लिए यह एक प्रक्रिया है। यीशु ने कहा था कि आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। दिबार अपार्टियन ने लिखा, दुर्भाग्यवश कुछ ईसाई अब भी अपने मृत पिताओं को दफना रहे हैं, कुछ अब भी अतीत की ओर देख रहे हैं और मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लेने से पहले अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य लोग घनिष्ठ मंडली के बिना या ऐसी चर्च का हिस्सा बनने को सहन नहीं कर सकते जिस पर अनुचित आलोचनाओं की बौछार होती है। समय कम होता जा रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करें। यदि आप जरूरी चीजों को प्राथमिकता देंगे, तो ईश्वर हमेशा आपकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने हिस्से की उपेक्षा करें और अपने घर परिवार की देखभाल करना छोड़ दें। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जरूरी चीजों को प्राथमिकता देनी है, ईश्वर और उनके कार्यों में लीन रहना है। आपको अपने रवैये और विकास से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि मसीह ने कहा, परंतु पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सब चीजें, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं तुम्हें मिल जाएंगी, मत्ती 6:33। क्या आप परमेश्वर के इस वादे पर विश्वास करते हैं? यदि हां, तो इसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। यदि आपने बपतिस्मा लिया था, तो वह बपतिस्मा आपके इस निर्णय का प्रतीक था कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में ईश्वर को सर्वोपरि रखेंगे। क्या आज भी आप ऐसा ही महसूस करते हैं? आपने ईश्वर से किसी भी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अधिक प्रेम करने की शर्त स्वीकार की थी, अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से और अपने पूरे मन से, मत्ती 22:37। यह सर्वोपरि आज्ञा है। क्या यह आपके जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है? और उसके बाद क्या दूसरी महान आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, आपके जीवन में सर्वोपरि प्राथमिकता रखती है? जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेम में भी प्राथमिकताएं होती है। सबसे पहले आपको ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और फिर अपने पड़ोसी से। इसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर से प्रेम करने के कारण आपको अपने पड़ोसी से प्रेम करना छोड़ देना चाहिए। यह केवल प्राथमिकता का प्रश्न है। वास्तव में यदि आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं, तो आप स्वतः ही अपने पड़ोसी से प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि आप अपने पड़ोसी से प्रेम किए बिना ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। 1 यूहन्ना 4:20। अपनी प्राथमिकताओं की सूची में किसी भी बात को न भूलें। आइए उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 22 के दूसरे पद से शुरू करते हैं। मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो यह बात समझ से परे थी। परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम करता है, लेकर मोरिया देश जा और वहां उसे उन पर्वतों में से एक पर होमबलि के रूप में चढ़ा जिनके विषय में मैं तुझे बताऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा क्रूर आदेश क्यों दिया? दिबार अपार्टियन ने इस पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, अब्राहम ने पूरी रात जाकर अपने विचारों से जूझते हुए बिताई होगी, यह सोचते हुए कि परमेश्वर ने ऐसी बलि क्यों मांगी। वह परमेश्वर से निस्संदेह प्रेम करता था, लेकिन वह अपने पुत्र इसहाक से भी बहुत प्रेम करता था। उसे परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम और अपने पुत्र के प्रति अपने प्रेम के बीच चुनाव करना था। यह चुनाव और भी कठिन था, क्योंकि अब्राहम अपने उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा था। हम हमेशा यह नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है। अब मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा मानना है कि परमेश्वर आप में से किसी को भी किसी की हत्या करने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर की अब्राहम के साथ एक योजना थी। 3 श्लोक पर जाइए। तो अब्राहम सुबह सवेरे उठा और अपने गधे पर काठी कसी और अपने 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को साथ लिया। उसने होमबलि के लिए लकड़ी काटी और उठा और उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे बताया था। 3रे दिन अब्राहम ने दूर से उस स्थान को देखा। अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम गधे के साथ यही ठहरो, मैं और मेरा बेटा उधर जाकर उपासना करेंगे और तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ली और उसे अपने बेटे इसहाक पर लादा। उसने अपने हाथ में आग और एक चाकू लिया और वे दोनों साथ साथ चल पड़े। क्या आप ऐसा करते? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की बलि देने को तैयार होते? आगे इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, मेरे पिता। और उसने कहा, मैं यहां हूं मेरे पुत्र। फिर उसने कहा, देखिए, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए मेमना कहाँ है? और अब्राहम ने कहा, मेरे पुत्र, परमेश्वर स्वयं होमबलि के लिए मेमना उपलब्ध कराएगा। इसलिए वे दोनों साथ साथ चले। फिर वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे बताया था। अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाई और लकड़ियां व्यवस्थित ढंग से रखीं। उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ियों के ऊपर लिटा दिया। अब्राहम ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने पुत्र को मारने के लिए चाकू उठाया, परंतु प्रभु के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकारा और कहा, अब्राहम, अब्राहम। तब उसने कहा, मैं यहां हूं। और उसने कहा, लड़के पर हाथ मत उठाओ और नहीं उसे कुछ करो, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर से डरते हो, क्योंकि तुमने अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को मुझसे नहीं रोका। तब अब्राहम ने ऊपर देखा और पाया कि उसके पीछे एक मेढ़ा झाड़ियों में सींगों से फंसा हुआ था। इसलिए अब्राहम गया और उस मेढ़े को लेकर अपने पुत्र के स्थान पर होमबलि के रूप में चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम परमेश्वर प्रदान करेगा रखा, जैसा कि आज तक कहा जाता है, परमेश्वर के पर्वत पर प्रदान किया जाएगा। अब पद 15। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से अब्राहम को दूसरी बार पुकारा और कहा, यहोवा कहता है, मैं अपनी शपथ खाता हूं, क्योंकि तूने यह काम किया है और अपने इकलौते बेटे को नहीं रोका, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंशजों को आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की रेत के समान बहुत बढ़ाऊंगा, और तेरे वंशज अपने शत्रुओं के द्वार पर अधिकार करेंगे। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी वाणी मानी है। यह करना कठिन था, परंतु अब्राहम परीक्षा में सफल हुआ। अब आइए मत्ती अध्याय 10 में चलते हैं। लेकिन आपके बारे में क्या? क्या आपके जीवन में ईश्वर सबसे पहले आता है? यहां तक कि आपके परिवार के सदस्यों से भी पहले। मत्ती 10 अध्याय 34 में यीशु ने सिखाया, यह मत सोचो कि मैं पृथ्वी पर शांति लाने आया हूं। मैं शांति लाने नहीं बल्कि तलवार लाने आया हूं। क्योंकि मैं तो पुरुष को उसके पिता के विरुद्ध, पुत्री को उसकी माता के विरुद्ध और बहू को उसकी सास के विरुद्ध खड़ा करने आया हूं, और मनुष्य के शत्रु उसके अपने ही घर के लोग होंगे। जो अपने पिता या माता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह भी मेरे योग्य नहीं है। बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों के साथ विवाद खड़ा करने और सच्चे ईसाई जीवन जीने से कतराते हैं। सच्चे ईसाई जीवन के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे पास अंग्रेजी में एक पुस्तिका है जिसका नाम है ईश्वर के राज्य के लिए ईसाई राजदूत। यह आपको ईसाई जीवन जीने के बारे में जानकारी और बाइबल संबंधी निर्देश प्रदान करेगी। यह हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, www.ccog.org। मुझे ऐसे लोगों ने संपर्क किया जिन्होंने कहा कि वे हमारे साथ जुड़ेंगे, या वे हमारे साथ जुड़ने में रुचि दिखाने लगे थे लेकिन परिवार के सदस्यों ने उन्हें रोक दिया, या उन्होंने परिवार के सदस्यों को उन्हें रोकने दिया। परिवार के सदस्य शायद शारीरिक रूप से उनके सामने आकर उन्हें रोके या उन पर दबाव न डाले, लेकिन ऐसा होता है। यीशु जानते थे कि ऐसा होगा। यदि आप यह देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या आपको वास्तव में कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड का समर्थन करना चाहिए और एक ईसाई के रूप में जीवन जीने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अपने परिवार के कारण आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ ले कि यीशु ने कहा था कि आपको समस्याएं होंगी। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर अपने परिवार को नाराज करना चाहते हैं। उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें, लेकिन हमें मनुष्यों की बजाय परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कुछ पारिवारिक परंपराएं पवित्र शास्त्र के अनुरूप नहीं है। यदि आप एक सच्चे ईसाई हैं, तो आप उनका पालन नहीं कर सकते। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और जैसा कि पौलुस ने लिखा है, हमें सभी मनुष्यों के साथ शांतिपूर्वक रहने का प्रयास करना चाहिए, रोमियो 12 अध्याय 18। इसलिए हम अपने परिवार के साथ समस्या पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें परिवार के सदस्यों को सच्चे ईसाई होने से रोकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं एक बार इंडोनेशिया के बाली में था और मैंने देखा कि परिवार के सदस्य पुरुषों पर हिंदू धर्म अपनाने का दबाव डालते हैं। शायद यही एक कारण है कि ईश्वर बहुत से हिंदू लोगों को अपने पास नहीं बुलाते, क्योंकि उन पर यह धर्म थोपा जाता है। लेकिन जो लोग ईश्वर के चर्च से बाहर पलेबड़े हैं, चाहे वे मसीह को मानते हों या किसी और धर्म को, अक्सर उनके परिवार में भी समस्याएं होती है। यीशु यहूदियों से बात कर रहे थे, उनके भी पारिवारिक मुद्दे थे। अगर आप आज इस जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता नहीं दे सकते, तो ईश्वर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आप कल जब हालात और कठिन हो जाएंगे तो उन्हें प्राथमिकता देंगे। पुराने नियम में हम राजा दाऊद और शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। उनके विचार बिल्कुल अलग थे। दाऊद के विचार ने उन्हें परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति बना दिया, जैसा कि 1 शमूएल 13:14 में कहा गया है, जबकि शाऊल के विचार के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि दाऊद का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण, जो उनकी गलतियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, उनकी प्राथमिकताओं की समझ थी? मैं 1 शमूएल 24 जा रहा हूं, इसलिए आपको वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय दे। शाऊल दाऊद से ईर्ष्या करता था। उसने दाऊद को ढूंढने और उसे मारने के लिए इसराइल से 3,000 सैनिकों को इकट्ठा किया। आश्चर्य की बात यह है कि परिस्थितियां बदल गईं, जिससे दाऊद को शाऊल को पकड़ने और मारने का एक अनूठा अवसर मिला जब शाऊल एक गुफा में विश्राम कर रहा था। 1 शमूएल 24:4, तब दाऊद के सैनिकों ने उससे कहा, यह वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था, देख मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा ताकि तू उसके साथ जैसा चाहे वैसा कर सके। कितना असाधारण अवसर था। आखिरकार दोनों पुरुष एक दूसरे के युद्ध में थे। शाऊल ने निर्दयी होने का प्रमाण दे दिया था। दाऊद के लिए शाऊल को मार डालना और यह कहकर अपना बचाव करना स्वाभाविक ही होता कि परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को उसके हाथों में सौंपने का वादा किया है, परंतु दाऊद ने ऐसा नहीं सोचा। 4 में आगे लिखा है, और दाऊद उठा और चुपके से शाऊल के वस्त्र का एक कोना काट डाला। इसके बाद दाऊद का मन व्याकुल हो गया क्योंकि उसने शाऊल का वस्त्र काट दिया था। और उसने अपने सेवकों से कहा, परमेश्वर न करे कि मैं अपने स्वामी परमेश्वर के अभिषिक्त के साथ ऐसा करूं, उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह परमेश्वर का अभिषिक्त है। इसलिए दाऊद ने अपने सेवकों को इन शब्दों से रोका और उन्हें शाऊल के विरुद्ध उठने नहीं दिया, और शाऊल गुफा से उठा और अपने रास्ते चला गया। क्यों? दाऊद का मन शाऊल से क्यों क्रोधित हुआ? उसने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उसकी प्राथमिकताओं में परमेश्वर की आज्ञा का पालन सर्वोपरि था। भले ही शाऊल उसे जान से मारना चाहता था, दाऊद ने राजा को कोई हानि पहुंचाने से इनकार कर दिया। परमेश्वर के अभिषिक्त का सम्मान करना उसके लिए अपने जीवन की रक्षा करने से भी अधिक महत्वपूर्ण था। दाऊद का यह असाधारण रवैया आज हम सभी के लिए एक उदाहरण है। क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि वह जल्द ही आने वाले परमेश्वर के राज्य में राजा बनेगा? जहां तक शाऊल की बात है, उसने अपने स्वार्थों के लिए सत्ता और स्वयं की प्रतिष्ठा के पीछे भागा, इसीलिए परमेश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब हम नए नियम की ओर चलेंगे, इस बार प्रेरितों के कार्य अध्याय 5 की ओर। पवित्र आत्मा प्राप्त करने से पहले मसीह के शिष्यों के पास शत्रु से लड़ने के लिए आवश्यक शक्ति और विश्वास नहीं था। जब रोमन सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार किया तो वे अपने गुरु को छोड़कर भाग गए। उन्होंने कुछ घंटे पहले ही वादा किया था कि वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अपने रूपांतरण के बाद शिष्यों ने अपनी प्राथमिकताओं को समझा। अपने मिशन के प्रति वफादार रहते हुए उन्होंने धमकियों और उत्पीड़न के बावजूद सुसमाचार का प्रचार किया। एक बार जब उन्हें परिषद के सामने लाया गया तो महायाजक ने उन्हें दोषी ठहराया। प्रेरितों के कार्य 5:26। तब सेनापति अधिकारियों के साथ गया और उन्हें बिना किसी हिंसा के ले आया, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कहीं ऐसा न हो कि उन्हें पत्थर मारकर मार डाला जाए। और जब वे उन्हें ले आए तो उन्होंने उन्हें परिषद के सामने खड़ा किया, और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें इस नाम से प्रचार न करने की सख्त आज्ञा नहीं दी थी? और देखो, तुमने यरूशलेम को अपने उपदेशों से भर दिया है और इस मनुष्य का लहू हम पर लाना चाहते हो। परंतु पत्रस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, हमें मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने यीशु को, जिसे तुमने वृक्ष पर लटकाकर मार डाला, जिलाया। परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ पर बिठाकर राजकुमार और उद्धारकर्ता बनाया है, ताकि वह इसराइलियों को पश्चाताप और पापों की क्षमा दे। हम इन बातों के साक्षी है, और पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने अपने आज्ञा मानने वालों को दिया है। यह प्राथमिकताओं का सवाल था। शिष्यों का जीवन दांव पर लगा था, लेकिन वे मसीह के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार थे, भले ही इसका मतलब मृत्यु हो। मैं मत्ती 10 में जा रहा हूं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यीशु से सीखा, और जो अपना क्रूस नहीं उठाता, ध्यान दे कि यूनानी शब्द स्टावरोस है, जिसका अर्थ है सूली, और जो मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपना जीवन पाता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे लिए अपना जीवन खोता है वह उसे पाएगा। अपनी प्राथमिकताओं की सूची में क्या परमेश्वर, उनका चर्च और उनका सुसमाचार आपके जीवन से पहले आते हैं, या फिर आप अपने जीवन को खोने के डर से उसे बचाने के लिए बेताब है? मसीह के शब्दों को याद रखें। जब तक आप अपनी प्राथमिकताओं को सही नहीं करेंगे, तब तक आप अपना जीवन खो सकते हैं। एक सच्चे ईसाई को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। बाइबल का अध्ययन और प्रार्थना परमेश्वर की संतान बनने की दिशा में आपके विकास के दो अनिवार्य साधन हैं। लेकिन आप इन साधनों का कितनी बार उपयोग करते हैं? आप प्रतिदिन परमेश्वर और उनकी बाइबल के साथ कितना समय बिताते हैं? परमेश्वर के चर्च में कुछ लोग बाइबल अध्ययन को एक बोझ समझते हैं। वे अपनी दैनिक दिनचर्या में इसके लिए समय नहीं निकाल पाते। उन्हें यह एहसास नहीं है कि जितना अधिक वे बाइबल का अध्ययन करेंगे, उतना ही वे परमेश्वर की इच्छा और उन्हें प्रसन्न करने के तरीके के बारे में जानेंगे। यदि आप वास्तव में ईसाई हैं, तो बाइबल को अन्य पाठों और अध्ययनों से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बाइबल का अध्ययन करके आप स्वयं पर उपकार कर रहे हैं। बाइबल अध्ययन एक सौभाग्य है, कोई बोझ या कार्य नहीं। और आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? क्या आप हर दिन ईश्वर से बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं? क्या आपको वास्तव में प्रार्थना करने में आनंद आता है? या प्रार्थना आपके लिए महज एक दिनचर्या बन गई है, एक कर्तव्य जिसे आपको निभाना पड़ता है? प्रार्थना के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे पास एक निःशुल्क ऑनलाइन पुस्तिका है अंग्रेजी में, जिसका शीर्षक है प्रार्थना बाइबल क्या सिखाती है। यह हमारी वेबसाइट www.ccog.org पर उपलब्ध है। यदि आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट है, तो प्रार्थना आपके जीवन में स्वतः ही आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए यह दिन का सबसे आनंदमय क्षण बन जाता है, क्योंकि यह आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वोच्च सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ कुछ समय बिताने का अवसर देता है, जो आपसे प्रेम करते हैं और आपकी बात सुनने के लिए समय निकालते हैं। जरा सोचिए, यदि उनके पास आपकी बात सुनने का समय है, तो आप उनसे बात करने के लिए समय क्यों नहीं निकालेंगे? नियमित रूप से उपवास करना, सप्त का पालन करना और ईश्वर के पवित्र दिनों का पालन करना भी याद रखें। ईश्वर के पवित्र दिनों की सूची हमारी वेबसाइटों पर कई भाषाओं में उपलब्ध है। हमारी वेबसाइटों के लिंक के लिए ccog.org पर जाएं, जहां आपको यूरोपीय, अफ्रीकी, एशियाई, भारतीय, स्पेनिश और अन्य भाषाओं में वेबसाइटें मिलेंगी। ccog.org पर क्या आपको ईश्वर के पवित्र दिन मनाने चाहिए या राक्षसी अवकाश नामक एक अंग्रेजी पुस्तक भी उपलब्ध है। अपनी प्राथमिकताओं का ईमानदारी से पालन करने में बहुत मेहनत लगती है। इसमें सोच विचार और परिश्रम शामिल है। यदि आज चर्च मसीह के आगमन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तो इसका कारण यह है कि हम सब मिलकर पर्याप्त प्रयास नहीं करते और अक्सर अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो ईश्वर से कट चुकी है, शैतान चाहता है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को उलट दें या उन्हें पूरी तरह त्याग दें। ऐसा न होने दें। ईश्वर का अनुसरण करें, उनकी आज्ञा माने, उन्हें सर्वोपरि रखें और आप अधिक प्रसन्न रहेंगे। अब इस विशेष प्रवचन को तैयार करने के लिए मैंने जिस अगली चीज का इस्तेमाल किया, वह दिबार अपार्टियन की जानकारी थी। मैंने पहले भी कई बार उनके कथन उद्धृत किए हैं। उन्होंने जो अगली बात कही, वह थी दशांश। दशांश एक नियम है। यह एक आशीर्वाद है। जब आप दशांश देते हैं, तो आप ईश्वर पर कोई उपकार नहीं करते, आप स्वयं पर उपकार करते हैं। आप अपना दशांश कैसे देते हैं? आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या आप अपनी सैलरी का पहला दशांश मिलते ही दे देते हैं, या आप इसे अपने अन्य बिलों का भुगतान करने के बाद ही देते हैं? दिबार अपाटिया ने लिखा, मुझे याद है कि हर्बर्ट डब्ल्यू आर्मस्ट्रांग ने एक धार्मिक सम्मेलन के दौरान हमसे कहा था कि वे हमेशा अपना चेक मिलते ही सबसे पहले अपना दशांश देते हैं। उनके बाकी बिलों का भुगतान बाद में करना पड़ता है। उनका पहला चेक हमेशा परमेश्वर को उनका हक देने के लिए होता है। हम सभी के लिए यह कितना अद्भुत उदाहरण है। अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोपरि रखें। परमेश्वर के कुछ लोगों ने दशांश देने से मिलने वाले आशीर्वाद खो दिए हैं, क्योंकि वे परमेश्वर से सौदेबाजी करते हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं का बोध खो दिया है। उन्हें यह एहसास नहीं है कि दशांश देना एक विशेषाधिकार और आशीर्वाद है, बोझ नहीं। आज कुछ लोग अपना दशांश देते समय परमेश्वर से सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं। वे बचत करने या कम से कम देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस रवैये के साथ दशांश देना एक बोझ बन जाता है, आशीर्वाद नहीं। परमेश्वर प्रसन्नता पूर्वक देने वाले से प्रेम करते हैं और वे आपको हर आशीर्वाद प्रदान करने में सक्षम है। क्या आप प्रसन्नता पूर्वक देने वाले हैं? फिर श्री अपार्टियन व्यवस्था विवरण से उद्धरण देते हैं। अध्याय 16 के पद 17 में लिखा है, हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की उस आशीष के अनुसार देना चाहिए जो उसने तुम्हें दी है। चलिए एक तिमोथी अध्याय 6 में चलते हैं। बहुत से लोग ईश्वर से अधिक धन को प्रिय मानते हैं। उन्हें अपनी प्राथमिकताओं को बदलने की आवश्यकता है। संतोष के साथ ईश्वर भक्ति करना बड़ा लाभ है, क्योंकि हम इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आए और निश्चित है कि हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। भोजन और वस्त्र पाकर हम संतुष्ट रहेंगे, परंतु जो धनवान बनने की इच्छा रखते हैं, वे प्रलोभन और जाल में फंस जाते हैं और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक वासनाओं में पड़ जाते हैं जो मनुष्यों को विनाश और सर्वनाश में डुबो देती है। बाइबल धनवान बनने वालों की निंदा नहीं करती, परंतु यदि यह लालसा उनकी प्राथमिकताओं को बदल देती है तो यह एक बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि धन का लोभ समस्त प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसके कारण कुछ लोग अपने लालच में विश्वास से भटक गए हैं और अपने आप को अनेक दुखों से छलनी कर लिया है। धन का लोभ पहली आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। पद 11। परंतु हे परमेश्वर के जन, इन बातों से दूर रहो और धर्म, ईश्वर भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का अनुसरण करो। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो, अनंत जीवन को थामे रहो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है, और तुमने अनेक साक्षी उपस्थित होते हुए अच्छी गवाही दी है। बहुत से लोगों की प्राथमिकताएं सही नहीं होतीं और वे ईश्वर की तुलना में दुनिया की चीजों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अब मलाकी अध्याय 3 के 6 पद से शुरू करते हैं। बहुतों में दशमांश देने का विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं बदलता नहीं। इसलिए हे याकूब के पुत्रों, तुम नाश नहीं होगे। फिर भी तुम्हारे पूर्वजों के समय से ही तुम मेरी आज्ञाओं से विमुख हो गए हो और उनका पालन नहीं किया है। मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा, सेनाओं के यहोवा ने कहा। परंतु तुमने कहा, हम किस मार्ग से लौट आएंगे? उन्हें लगा कि वे ठीक है, क्योंकि उन्होंने आज्ञाओं का पालन किया और जो उन्हें करना चाहिए था वह किया। पद 8। क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुमने मुझे लूटा है। परंतु तुम कहते हो, हमने आपको किस मार्ग से लूटा है? दशांश और भेंटों में। तुम शापित हो, क्योंकि तुमने मुझे लूटा है, यहां तक कि इस पूरे राष्ट्र ने भी। अपने सारे दशांश भंडारगृह में लाओ, ताकि मेरे घर में भोजन हो, और अब इस बात में मेरी परीक्षा लो, सेनाओं के प्रभु कहते हैं, यदि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार न खोलूं और तुम पर ऐसी आशीष न उंडेलूं कि उसे ग्रहण करने के लिए स्थान ही न रहे। हां, देना विश्वास का प्रमाण है। चलिए याकूब अध्याय 2 में चलते हैं और पद 14 से शुरू करते हैं। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि उसे विश्वास है परंतु उसके कर्म न हो, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास उसे बचा सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगा और भूखा हो और तुम में से कोई उससे कहे, शांति से जाओ, तुम्हें गर्मी और तृप्ति मिले, परंतु तुम उसे शरीर के लिए आवश्यक चीजें न दो, तो इससे क्या लाभ? इसी प्रकार यदि विश्वास में कर्म न हो, तो वह अपने आप में मृत है। लेकिन कोई कहेगा, तुम्हारे पास विश्वास है और मेरे पास कर्म है, मुझे अपने कर्मों के बिना अपना विश्वास दिखाओ और मैं अपने कर्मों से अपना विश्वास दिखाऊंगा। तुम मानते हो कि एक ही ईश्वर है, तुम अच्छा करते हो, यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और कांपती है। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो, हे मूर्ख मनुष्य, कि कर्मों के बिना विश्वास मृत है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहराए गए थे जब उन्होंने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर बलिदान किया था? क्या तुम देखते हो कि विश्वास उनके कर्मों के साथ मिलकर काम कर रहा था और कर्मों के द्वारा विश्वास सिद्ध हुआ और वह वचन पूरा हुआ जो कहता है, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो तुम देखते हो कि मनुष्य कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है, केवल विश्वास से नहीं। कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड में हम अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका के लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में लगाते हैं और इसके लिए आस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हम इन पैसों से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो लोग नहीं जानते, उनके लिए स्पष्ट कर दूं कि और मेरी पत्नी चर्च से कोई वेतन नहीं लेते। पद 25 में आगे लिखा है, इसी प्रकार क्या वेश्या राहाब भी अपने कामों से धर्मी नहीं ठहराई गई जब उसने दूतों को ग्रहण किया और उन्हें दूसरे मार्ग से विदा किया? क्योंकि जैसे आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है, वैसे ही कर्मों के बिना विश्वास भी मरा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हम भूखों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि हमारे अधिकांश कार्य अफ्रीका के गरीबों की सहायता के लिए होते हैं। हम उन्हें आध्यात्मिक रूप से, साहित्य, चर्च सेवाओं, सेवकाई और यात्रा के माध्यम से भी सहायता प्रदान करते हैं। शारीरिक रूप से हमने गद्दे, सामग्री, पवित्र दिनों में सहायता और इस प्रकार के अन्य कार्य किए हैं। क्या आप वास्तव में अपने बुलावे के उद्देश्य को जानते और समझते हैं? क्या परमेश्वर ने आपको विशेष रूप से इस समय उद्धार पाने के लिए बुलाया है, या इस संसार में आपको कोई विशेष कार्य सौंपने के लिए? यह एक ऐसा प्रश्न है जो चर्च के प्रत्येक सदस्य को स्वयं से पूछना चाहिए और उत्तर को समझना चाहिए। आपको केवल उद्धार पाने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि एक कार्य करने के लिए, एक टीम का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया है। यही आपके बुलावे की प्राथमिकता है। इस समय आपका अपना उद्धार प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता है कार्य को पूरा करना। यदि आप ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और अंत तक दृढ़ रहते हैं, तो आपका उद्धार होगा। हालांकि यदि आप अपने हिस्से की उपेक्षा करते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं, तो परमेश्वर आपका कार्य करने के लिए किसी और को नियुक्त करेगा। आज परमेश्वर की कलीसिया में हम प्रथम फल है। एक अर्थ में यह परमेश्वर से प्राप्त जन्मसिद्ध अधिकार के समान है। हम वे पहले लोग हैं जिन्हें बड़ी फसल से पहले बुलाया गया है, और हमें यीशु के आदेशों को पूरा करके उस बड़ी फसल की तैयारी करने का कार्य सौंपा गया है। हमें यह करना है क्योंकि हमें वास्तव में परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। अन्य उपदेशों में मैंने मत्ती 24, 14 और मत्ती 28, 19 से 20 के बारे में बात की है। अब आइए मत्ती 22 पर चलते हैं और कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो आपने पहले भी सुना है और इस उपदेश में भी सुना है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे फिर से कहना चाहता हूं। मत्ती 22, पद 37, यीशु ने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे विवेक से प्रेम करना। यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है, और दूसरी आज्ञा भी इसी के समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इन दो आज्ञाओं पर ही समस्त व्यवस्था और भविष्यवाणियां आधारित है। अब आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में चलते हैं और इसके बारे में भी कुछ पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 6, पद 5 कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करना, और ये वचन जो मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं तेरे हृदय में रहें। तू इन्हें अपने बच्चों को लगन से सिखा, और जब तू अपने घर में बैठे, जब राह पर चले, जब ले जाए और जब उठे, तब इनके विषय में बातें करे। तू इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांध ले, और ये तेरे आंखों के बीच में पट्टी के समान हो। तुम इन्हें अपने घर के दरवाजों और फाटकों पर लिखोगे। और लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 18 कहता है, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करोगे, मैं यहोवा हूं। अब हम फिलाडेल्फिया के मसीही हैं। हमें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाकर और यीशु की आज्ञाओं का प्रचार करके दूसरों से प्रेम करना है। मत्ती 24, 14 और मत्ती 28, 19-20 इसी विषय पर है। हमारे पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, जिसका लगभग 100 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यदि आप वेबसाइट ccog.org पर जाएं और बाईं ओर स्क्रॉल करें, तो आपको भाषाओं की सूची दिखाई देगी। ये उपलब्ध भाषाएं हैं। आप किसी भी भाषा पर क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं। यह सिद्ध करता है कि हम इस आज्ञा को गंभीरता से लेते हैं। मत्ती 28, 19-20 में कहा गया है कि सारी दुनिया में जाओ और यीशु की आज्ञाओं के अनुसार सब बातें सिखाओ। हमारे पास अंग्रेजी में उपदेश है जिनमें नए नियम में यीशु द्वारा दी गई हर आज्ञा का वर्णन है। हमने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के हर पद के साथ साथ प्रेरितों के कार्य, कुरिन्थियों और प्रकाशित वाक्य में यीशु के कुछ उद्धरणों का भी वर्णन किया है। इसलिए हम वही कर रहे हैं जो यीशु हमसे करवाना चाहते हैं। यही वह प्राथमिकता थी जो उन्होंने हमें दी थी। अब मैं अन्य चर्चों के बारे में बात नहीं करूंगा, चाहे वे इनमें से कुछ बातें करते हो या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमने यीशु की सभी आज्ञाओं को शामिल करते हुए अपने उपदेशों के द्वारा मत्ती 28, 19-20 को पूरा किया है। मैंने अफ्रीका और यूरोप के लोगों से भी यही करने को कहा है। बाइबल दर्शाती है कि अंत में अधिकांश मसीहियों के पास समय की सही प्राथमिकताएं नहीं होंगी। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में चलते हैं। मैं पद 1 से शुरू करना चाहता हूं। हम सर्दीस के चर्च के दूत के बारे में जानेंगे। और सर्दीस की कलीसिया के दूत को लिखो, परमेश्वर की सात आत्माओं और सात तारों वाले परमेश्वर की यह वाणी है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं कि तुम्हारा नाम तो जीवित है परंतु तुम मरे हुए हो। सावधान रहो और जो बातें शेष है जो मरने को तैयार है उन्हें मजबूत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे कामों को परमेश्वर के सामने परिपूर्ण नहीं पाया। इसलिए याद रखो कि तुमने कैसे पाया और सुना, दृढ़ रहो और पश्चाताप करो। इसलिए यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो मैं चोर की तरह तुम पर आऊंगा और तुम नहीं जानोगे कि मैं किस वक्त तुम पर आऊंगा। वह कह रहा है कि उनकी प्राथमिकताएं सही नहीं है। अब एक समूह जो सार्डिस चर्च के विचारों को दर्शाता है ने अंत समय की कई भविष्यवाणियों के विरुद्ध शिक्षा दी है, और यदि लोग उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं तो उन्हें यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि यीशु कब लौटेंगे। यह ईसाइयों का एक समूह है। मैंने आपको बताया था कि फिलाडेल्फिया के ईसाइयों को भाइयों से प्रेम रखना चाहिए, उन्हें उन खुले दरवाजों से होकर जाना चाहिए जिनके बारे में यीशु ने कहा था। आप इसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में और अधिक पढ़ सकते हैं, और उन्हें सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए। लेकिन ईसाइयों का एक और समूह है। पद 14 से शुरू होकर यह लाओदीकिया के चर्च के दूत बहुवचन के लिए है। अंत समय में ईसाइयों का यह विशाल बहुमत है, उनकी प्राथमिकताएं सही नहीं होंगी। और लाओदीकिया के चर्च के दूत को लिखो, ये बातें आमीन सच्चा और विश्वासयोग्य साक्षी परमेश्वर की सृष्टि का आरंभिक कहता है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं कि तुम न तो ठंडे हो और न ही गर्म। काश तुम ठंडे या गर्म होते। इसलिए क्योंकि तुम गुनगुने हो, न तो ठंडे हो और न ही गर्म, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। कुछ लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे समझता है। हां, वह समझता है कि तुम्हारा रवैया लाओदीकिया जैसा है और तुम्हारी प्राथमिकताएं सही नहीं है, क्योंकि तुम कहते हो, मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह ऐसा है जैसे यह सोचना कि मैं ईश्वर के चर्च में हूं, मैं सप्त और पवित्र दिनों का पालन करता हूं और जो करना चाहिए वो करता हूं, इसलिए मैं ठीक हूं। मुझे सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाने के काम में वैसे सहयोग करने की जरूरत नहीं है जैसे मुझे करना चाहिए। मुझे अफ्रीका के गरीबों की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं उन सबकी मदद नहीं कर सकता, तो कोशिश क्यों करूं? हम सबकी मदद नहीं कर सकते, यह सच है, लेकिन हमें अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। यीशु कहते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम कितने दुखी, दयनीय, गरीब, अंधे और नंगे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझसे अग्नि में तपाया हुआ सोना खरीदो जिससे तुम धनी हो जाओ, और सफेद वस्त्र खरीदो जिससे तुम ढके रहो और तुम्हारी नग्नता की लज्जा प्रकट न हो, और अपनी आंखों में मरहम लगाओ जिससे तुम देख सको। मैं जिन्हें प्रेम करता हूं उन्हें डांटता और सुधारता हूं। इसलिए उत्साह रखो और पश्चाताप करो। देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर दस्तक दे रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। लाओदीकिया के लोग वास्तव में परमेश्वर की प्राथमिकताओं को नहीं समझते। यदि आप चाहते हैं कि यीशु आपके साथ भोजन करे, तो शायद आपको दूसरों को आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से भोजन कराने में मदद करने पर विचार करना चाहिए। सार्डिस के लोगों की तरह वे सत्य में पर्याप्त रुचि नहीं रखते थे। बहुत से लोग बहाने बनाते हैं, वे समझौता करते हैं, वे उस कार्य को पर्याप्त महत्व नहीं देते जो परमेश्वर करवाना चाहता है। यीशु के अनुसार अंत समय में यह स्थिति मुख्य रूप से फिलाडेल्फिया के मसीहियों तक ही सीमित है। अब मैं सभोपदेशक अध्याय 12 के पद 13 से शुरू करना चाहता हूं। आइए इस सारी बात का सार सुने। परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि यही मनुष्य का सब कुछ है। क्योंकि परमेश्वर हर काम का न्याय करेगा जिसमें हर गुप्त बात भी शामिल है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। ईश्वर को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, और वह लोगों द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति सजग है। वह हर कार्य, आपके सभी निर्णयों और आपकी प्राथमिकताओं का न्याय करेगा। क्या आप पहली आज्ञा का पालन करते हैं? मैं फिर से दीबार अपार्टियन का हवाला दूंगा। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने जन्मसिद्ध अधिकार बेच दिए हैं, या बेच रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे एसाव ने किया था। लेकिन जब एसाव ने इसे खो दिया तो अंततः वह इससे घृणा करने लगा। ठीक उसी तरह जैसे जब आप अपनी प्राथमिकताओं का बोध खो देते हैं तो आप अपने मूल्यों का बोध भी खो देते हैं। अपने जन्मसिद्ध अधिकार की उपेक्षा न करें, इसका तिरस्कार न करें, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। शायद सबसे कठिन प्राथमिकताओं में से एक है स्वयं को विनम्र बनाना और दूसरों को स्वयं से श्रेष्ठ समझना। अब उन्होंने फिलिप्पियों अध्याय 2 का हवाला दिया है, इसलिए मैं फिलिप्पियों पर वापस जा रहा हूं। फिलिप्पियों 2 के पहले पद से शुरू करते हुए प्रेरित पौलुस ने लिखा, इसलिए यदि मसीह में कोई सांत्वना है, यदि प्रेम का कोई दिलासा है, यदि आत्मा की कोई संगति है, यदि कोई स्नेह और दया है, तो एकमत होकर, एक ही प्रेम रखकर, एकमत होकर, एक ही विचार से मेरी खुशी पूरी करो। स्वार्थी महत्वाकांक्षा या अहंकार से कुछ भी न करो, बल्कि नम्रता से प्रत्येक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझो। तुम में से प्रत्येक न केवल अपने हितों की बल्कि दूसरों के हितों की भी चिंता करो। तुम में से प्रत्येक केवल अपने हित का ही नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। फिलाडेल्फिया के समान विनम्र बनो। शैतान चाहता है कि तुम घमंडी हो जाओ, परमेश्वर चाहता है कि तुम विनम्र बनो। शैतान अपनी पूरी शक्ति से तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि तुम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझो। यही परमेश्वर की शिक्षा और शैतान के प्रभाव में संसार की शिक्षा में अंतर है। परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। बाइबल हमारी मार्गदर्शक है। हमारे शिक्षक परमेश्वर है, जो भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के लेखों के माध्यम से हमें सिखाते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, आइए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन व्यतीत करें। यही हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है। चलिए याकूब की पुस्तक का अध्याय 1 खोलते हैं। आपको परमेश्वर से प्रेम क्यों करना चाहिए? इसका एक कारण यह है। पद 17, हर अच्छा उपहार और हर उत्तम उपहार ऊपर से आता है और ज्योति के पिता से उतरता है, जिसमें कोई परिवर्तन या परिवर्तन की छाया नहीं है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि के प्रथम फल हों। हर अच्छा उपहार परमेश्वर से है। यीशु अपने अनेक भाइयों में पहला पुत्र था। परमेश्वर की हमारे लिए एक योजना है कि वह हमें महिमा दे जैसे उसने मसीह को महिमा दी। यह बात यूहन्ना 17 के पद 22 में देखी जा सकती है। परमेश्वर की योजना है कि वह इस ब्रह्मांड को अपने पुनर्जीवित बच्चों के अधीन कर दे, इब्रानियों 2 के पद 5 से 10 तक। और यूहन्ना 4 के पद 19 में लिखा है, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। रोमियो 5 के पद 8 और 9 में पौलुस ने लिखा, परंतु परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी थे तब भी मसीह हमारे लिए मर गया। इसलिए अब उसके लहू से धर्मी ठहराए जाने के कारण हम उसके द्वारा क्रोध से बचाए जाएंगे। आपकी समस्याओं के बावजूद आपके लिए बड़ी बड़ी आशाएं भी है। रोमियो 8:28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए होता है, उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार बुलाया है। फिलिप्पियों 1:06, जिसे मैं अक्सर उद्धृत करना पसंद करता हूं, कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए होता है, उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बनाया है। सभी अच्छे उपहार परमेश्वर से आते हैं। हमारे पापों के बावजूद उसने यीशु को हमारे लिए मरने के लिए भेजा, यूहन्ना 3:16। यदि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सब कुछ हमारे भले के लिए होगा, और इस प्रकार परमेश्वर यीशु के दिन तक विश्वासयोग्य रहेगा और हमें महिमा देगा। हमारे पास परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बहुत कुछ है। हमें बाइबल के परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। फिर भी इतिहास में बहुत से लोग ज्योतिष, जादू टोना और प्रेतात्माओं की पूजा करने लगे हैं, जैसा कि यशाया अध्याय 47:13 में लिखा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 के अनुसार परमेश्वर के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यवस्था विवरण 4:19 में लिखा है, और सावधान रहो ऐसा न हो कि तुम आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और जब तुम सूर्य, चंद्रमा और तारों, आकाश की समस्त सेना को देखो, तो तुम उनकी उपासना और सेवा करने के लिए प्रेरित हो जाओ, जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने समस्त आकाश के नीचे के समस्त लोगों को विरासत के रूप में दी है। परमेश्वर केवल यह नहीं चाहता कि तुम धार्मिक बनो। यीशु ने कहा कि परमेश्वर चाहता है कि जो लोग उसकी उपासना करते हैं, वे आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। इसीलिए हम ज्योतिष जैसी चीजों को स्वीकार करते हैं। आइए व्यवस्था विवरण के 18वें अध्याय के 10वें पद से शुरू करते हैं। मैं इसमें से कुछ अंश पढ़ता हूं। इसमें लिखा है, तुम में से कोई ऐसा न पाया जाए जो अपने बेटे या बेटी को आग में से गुजारे, या जो जादू टोना करे, या भविष्यवक्ता हो, या शकुन का अर्थ बताए, या जादूगर हो, या मंत्र तंत्र करे, या माध्यम हो, या प्रेतात्माओं से बात करे, या मरे हुओं को बुलाए। क्योंकि जो कोई ये काम करता है, वह यहोवा के लिए घृणित है, और इन घृणित कामों के कारण यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उन्हें तुम्हारे सामने से निकाल देता है। तुम यहोवा अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष होगे, क्योंकि जिन जातियों को तुम निकालोगे, उन्होंने भविष्यवक्ताओं और ज्योतिषियों की बात सुनी, परंतु तुम्हारे लिए यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने ऐसे किसी को नियुक्त नहीं किया है। आपको अपने परमेश्वर यहोवा के समक्ष निर्दोष होना चाहिए। यह केवल ज्योतिष और जादू टोने से बचने की बात नहीं है, आपको निर्दोष होना चाहिए। यह पहली आज्ञा है। आपको परमेश्वर को सर्वोपरि रखना चाहिए। ईसाई चालाकी से गढ़ी गई कहानियों का अनुसरण नहीं करते, जैसा कि पत्रस ने दूसरे पत्रस के अध्याय 1 के अध्याय 16 में लिखा है। यूहन्ना 3 अध्याय के 4 अध्याय में कहा गया है कि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। हर पाप पहली आज्ञा का उल्लंघन है। यदि आप पाप करते हैं, तो आप परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप पश्चाताप कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो वह विश्वासयोग्य और न्यायपूर्ण है कि वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सारी अधार्मिकता से शुद्ध करेगा, जो अद्भुत है, क्योंकि हम हर समय पाप करते रहते हैं। हम हमेशा पहली आज्ञा का पालन नहीं करते, और फिर से यह वही आज्ञा है जिसका सबसे अधिक उल्लंघन होता है। कुछ लोगों का दावा है कि 10 आज्ञाएं केवल सिनाई पर्वत से ही अस्तित्व में आईं और उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया। लेकिन यदि आप बाइबल में देखें, तो पुराने नियम में सिनाई पर्वत से पहले भी पहली आज्ञा के बारे में शास्त्र मौजूद है, और यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी कई शास्त्र हैं जो पहली आज्ञा का समर्थन करते हैं। यहां एक उदाहरण है जो मैंने पहले पढ़ा था। यह सिनाई पर्वत से पहले का है। यह निर्गमन 18 का 11वां अध्याय है। इसमें लिखा है, अब मैं जानता हूं कि यहोवा सब देवताओं से महान है, क्योंकि जिस बात में उन्होंने घमंड किया, उसी में वह उनसे श्रेष्ठ था। इसलिए परमेश्वर ने सिनाई पर्वत से ही यह तय नहीं किया कि वह सबसे श्रेष्ठ होगा। और जैसा कि मैंने कहा, पुनरुत्थान के बाद नए नियम में भी कई शास्त्र हैं जो इस विचार का समर्थन करते हैं कि आपको पहली आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं जो पढ़ना चाहूंगा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वह है यूहन्ना 2 अध्याय 15, संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम न करो। यदि कोई संसार से प्रेम करता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो फिर से यह प्राथमिकताओं के बारे में है। अंत समय में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 में लिखा है, तब मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काट दिए गए थे, जिन्होंने उस पशु या उसकी मूर्ति की उपासना नहीं की थी। वे बाइबल के परमेश्वर से ऊपर किसी चीज की उपासना नहीं करने वाले थे। जैसा कि मैंने कहा, पहली आज्ञा न केवल सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि वह भी है जिसका सबसे अधिक उल्लंघन होता है। आइए 1 शमूएल अध्याय 15:22 पर चलते हैं। मैं इस पहली आज्ञा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। क्या यहोवा को होमबलि और बलिदानों में उतना ही आनंद आता है जितना यहोवा की वाणी मानने में? देखो, आज्ञा मानना बलिदान से श्रेष्ठ है, और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से श्रेष्ठ है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने के पाप के समान है, और हठधर्मी अधर्म और मूर्ति पूजा के समान है। यह जादू टोने को पहली आज्ञा के उल्लंघन से जोड़ता है। परमेश्वर अपने लोगों से उसकी आज्ञा मानने की अपेक्षा करता है। हमें अपने सृष्टिकर्ता और अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम करना चाहिए। पहली आज्ञा हमें यही याद दिलाती है, हमें सावधान रहने और इसका उल्लंघन न करने के लिए प्रेरित करती है। हमें सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करनी चाहिए, मत्ती 6:33, और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, नीतिवचन 3:5-6, और पहली आज्ञा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप पहली आज्ञा का पालन करते हैं तो आप किसी भी अन्य आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसलिए उस आज्ञा का पालन करें। अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखें। यह डॉ. बॉब थील कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड की ओर से है।